نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. اب آگے بتایا گیا اتنے بڑے بادشاہ کو چھوڑ کے بعض لوگ عام انسانوں کے پاس تلاش کرتے ہیں عزت، ان سے دوستیاں کرتے ہیں، ان کو الائز بناتے ہیں، ان کے ساتھ گہرے روابط رکھتے ہیں. کس لیے؟ کہ ان کو لگتا ہے کہ عزتیں یہاں سے ملیں گی. کیونکہ یہ آج کل کوئی بولے ورڈ تو اچھا نہیں لگتا، لیکن پھر بھی یہ آج کل سپر پاور ہیں، یا ان کا طوطی بولتا ہے دنیا میں، یا یہ بہت بڑے سمجھے جاتے ہیں، یا ان کے ساتھ بیٹھوں گی، ان کے ساتھ مراسم بناؤں گی، ان کے ساتھ تعلقات رکھوں گی کہ تو میں بھی بڑی سمجھی جاؤں گی. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پہ کہ کافروں کے ساتھ دوستی کرنا کس حد تک جائز ہے، کی بھی جا سکتی ہے یا نہیں. اس کا جواب کیا؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين، نہ بنائے مومن کافروں کو اولیاء. اولیاء نہ بنانا. اولیاء کیا ہوتا ہے؟ ولی کی جمع اولیاء ہوتا ہے. اور ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو حمایتی ہو، پروٹیکٹر، مددگار، گہرا دوست، دلی دوست، جو ہمدرد. یعنی یہ بہت ایسی دوستی کے بارے میں آتا ہے جو جس کو آپ کہتے ہیں نا دلی محبت، جن کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان کو آپ کافروں کو دلی دوست نہیں بنا سکتے مومنوں کو چھوڑ کے. ظاہر ہی بات ہے کافروں سے دوستی اتنی گہری کرنی ہوگی تو اس کے لیے مومنوں سے دوستی چھوڑنی ہی پڑے گی نا. دونوں دوستیاں ساتھ تو نہیں چل سکتی ہیں، دونوں اپوزٹ راستے ہیں. تم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اتنی گہری دوستیاں گانٹ کے نہیں رکھ سکتے. ایمان اور کفر کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس لیے کہ دوستی جو ہوتی ہے نا، جو ولایت ہوتی ہے، وہ کامن گراؤنڈز پہ ہوتی ہے. کیا چیز ہے کامن مومن میں اور کافر میں؟ کچھ بھی نہیں. نہ لائف سٹائل کامن ہے، نہ ان کے عقیدے کامن ہے، نہ ان کی سوچ کامن ہے، نہ ان کے گولز کامن ہے. کیا کامن ہے پھر؟ لیکن لوگ کیوں رکھتے ہیں یہ تعلقات؟ بعض تو میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی عزت لینے کے لیے، آج کل کے وقت میں تو زیادہ تر یہی ہے نا، کوئی عہدے لینے کے لیے، کوئی اور مفاد اپنے، کوئی فائدے اپنے، بینیفٹس اپنے لینے کے لیے ان کے ساتھ گہری دوستیاں رکھتے ہیں. بعض جگہ پہ یہ بھی ہوتا ہے فیملی تعلقات ہیں، کہیں کچھ اور کوئی ایک ریورٹڈ ہو گیا، بعض لوگ ان کی فیملیز ویسے ہی رہتی ہیں، تو ان کے ساتھ پھر کیا تعلقات رکھیں. اور کوئی کسی کے ساتھ کوئی خریدنا بیچنا ہے، کوئی کولیگز ہیں، کوئی کلاس فیلو ہیں، کوئی ٹیچر ہے، کوئی مطلب کتنے سارے. آپ جب غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں تو آپ کا انٹریکشن تو ہوتا ہے، تو اس میں اب کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا؟ تو اس کا بھی ہمیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی طرف سے جو رہنمائی ملتی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں تعلقات سب کے ساتھ کیا ایک جیسے ہوتے ہیں؟ مثلا آپ کے جو بہن کے ساتھ تعلقات ہوں گے وہ ہمسائی کے ساتھ الگ ہوں گے، بہن کے ساتھ الگ ہوں گے، دوست کے ساتھ الگ ہوں گے، جو کلاس میں اور لوگ آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کے ساتھ الگ ہوں گے. تو تعلقات کی قسمیں ہوتی ہیں نا، تو اسی طرح جو غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات ہیں نا ان کی بھی قسمیں ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. پہلی قسم جیسے یہ یہاں پہ مولات کہا گیا، ولایت کا، دلی دوستی کا گہرا تعلق، وہ تو نہیں ہو سکتا کافروں کے ساتھ. ٹھیک ہے. نمبر ٹو ہے مواسات، میم واو الف سین الف تا، مواسات یعنی ہمدردی کا، خیر خواہی کا، دوسرے کا بھلا چاہنا. یہ سب انسانوں کے ساتھ ہی کرنا ہے. اس کے اندر کافر ہو، پھر یہ نہیں کہنا کہ نہیں وہ جو ہے نا یہ کافر ہیں، ہم نے ان کے ساتھ تو کوئی ہمدردی بھی نہیں رکھنی، ان کے منہ پہ تھوکو اور ان کو برا بھلا کہو. نہیں، ان کا بھی بھلا چاہیں گے، خیر خواہی ہوگی تو ان کو دعوت دیں گے نا دین کی. پھر تیسرا درجہ ہے مدارات کا، جس کو پروٹوکولز کہتے ہیں. ये जाहिरी खुशखलकी दोस्ताना बर्ताओ जिसमें अलैक सलैक है, जाहिर का ताल्लुक, ये सारी चीजें तो होंगी। अच्छे अखलाक से पेश आना ये भी सही है। फिर है मामलात, वर्किंग रिलेशनशिप्स। आपने किसी के साथ मसलन ये सारा जो मैंने आपको बताया कि कोई आपके कुलीग हैं, कोई आपके हमसाए हैं, ये सारे हैं, उनके साथ कोई मामलात करने हैं, वो भी सही है। खास तौर पे बिजनेस रिलेशनशिप्स होते हैं, और या आपके बॉस है या कोई आपके अंडर काम करता है, तो सब जायज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो यहूदी लड़के की बीमार पुरसी करने गए थे ना, मैंने आपको सुनाई थी वो हदीस और उसको इस्लाम की दावत दी थी, तो वो यहूदी लड़का था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काम करता था, तो जब वो बीमार हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बीमारी में उसको देखने भी गए थे। तो ये जाहिर है एक हमदर्दी का, खैरख्वाही का दूसरों के लिए जज्बा है। अब ये देखें, इसमें ये नहीं है कहीं कहा गया कि आपने कट ऑफ हो जाना है, आपने इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना, कोई बात नहीं करनी, ये नहीं कहा गया। वो तो ताल्लुकात जाहिर है रहेंगे, आप दुनिया में रहेंगे, उनके साथ ताल्लुक भी होगा, उनके साथ बातचीत भी होगी, लेकिन फिर वो ताल्लुक विलायत तक ना पहुंचे कि फिर इंसान इतना ज्यादा आगे बढ़ जाए कि उनके ऊपर भरोसा कर रहा है, या उनके साथ ऐसे कि उठना बैठना, खुशी गमी, उनके शादी ब्याह, उनके हर चीज के अंदर हम नवाला हम प्याला जिसको कहते हैं, इस तरह की दोस्ती वो नहीं रख सकते। हाँ वैसे है कि देखें, बस आप माशरती माशरे में रहते हैं तो जाहिर ही बात है उनके साथ कर्ज का लेन देन भी हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज भी लिया था यहूदी से, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी तो एक जेरा उसके पास रहन रखी भी थी, ताजियत भी कर सकते हैं उनसे। इसी तरह हजरत सहल और कैस बिन साद कादसिया में बैठे हुए थे तो उनके पास एक जनाजा गुजरा, वो दोनों खड़े हो गए तो उन्हें बताया गया कि तो एक जिम्मी का जनाजा था, यानी वो गैर मुस्लिम था। उन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा गुजरा था, आपसे कहा गया ये एक यहूदी का जनाजा है, तो आपने फरमाया क्या ये रूह नहीं है, ये तो मतलब इंसान है ना, इंसान की उसकी ताजियत है। ये सही बुखारी में है रिवायत, तो जनाजे में तो नहीं शामिल होना लेकिन उसकी इज्जत है एक, तो इसलिए यानी ये नहीं आप कह सकते कि नफरतें करें, नफरतें फैलाएं, ये चीज नहीं है। क्योंकि देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानी दुश्मनों के साथ, जानी दुश्मन तो काफिर ही थे ना, उनके साथ भी रहम का मामला किया। मक्का में जब कहत पड़ा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंदम डोनेट की थी, और आपने अभी पिछली आयात में पढ़ ही लिया ना कि गैर मुस्लिमों को आप डोनेशन भी दे सकते हैं, डोनेशन क्या, डोनेशन उस लिहाज से कि चैरिटी उनके ऊपर कर सकते हैं। तो अगर मसलन है कि कोई यहाँ पे कोई सुनामी आता है, कोई यहाँ पे दुनिया में कोई ऐसा हरिकेन आ जाता है, कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है, तो ये नहीं कि ये अब काफिर है, हमने तो इनके साथ नहीं कुछ भलाई करनी, ये सही नहीं है। क्या है तो उन्हीं के ऊपर पड़ा था ना जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया इन्होंने तो हमें निकाला था हम क्यों इनकी मदद करें, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए डोनेट किया गंदा। इसी तरह मक्का फतह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ कर दिया था। जंगी कैदियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सलूक किया था ना बदर में कि ह्यूमन हिस्ट्री में इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। इसी वजह से इस्लाम फैला भी। इस्लाम जो है ना इंसान दोस्त दीन है, और आज हम नफरतें फैलाने वाले हैं, नफरतें करने वाले हैं, इसी वजह से फिर देखें कि आज ये हाल है कि फिर हमें नफरतें ही मिलती हैं। तो इस्लाम इंसानों के साथ हमदर्दी का, खैरख्वाही का हुक्म देता है। हाँ मगर ये है कि कोई ऐसे अगर काफिर हैं जो आपके साथ जंग कर रहे हैं, जो आपके साथ आमने सामने जंग है, तो जाहिर है उनके साथ तो नहीं ऐसा मामला होगा, फिर तो जाहिर है जंग के मौके पर जंग ही होगी, लेकिन जो आम लोग हैं उनके साथ फिर इसी तरह मामला किया जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह मुमतहिना में आयत नंबर 8 आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें इस बात से नहीं रोकता कि तुम उन काफिरों के साथ नेकी और अदल का बर्ताव करो, किनके साथ, जिन्होंने तुम्हारे दीन के मामले में जंग तुमसे नहीं की और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला। बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है, तो अल्लाह तुम्हें उन लोगों के साथ नहीं नेकी करने से रोकता, अदल करने से नहीं रोकता, नेकी और अदल सबके साथ होगा। अब इन्होंने अगर आपके साथ जंग नहीं की, आपको आपके घरों से नहीं निकाला, तो फिर आप उनके साथ मामला करेंगे। इसी तरह अगर किसी के रिलेटिव है तो आप देखेंगे हजरत अस्मा जो थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी कि मेरी वालदा वो काफिर है, मुशरिका है, तो वो मेरे पास आई है तो मैं उनके साथ क्या अच्छा सलूक करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ अपनी माँ से सिला रहमी करो, ये बुखारी में। और ये भी आया कि वो इनके लिए गिफ्ट्स भी लेकर आई थी, घी लेकर आई थी और सब्जी कुछ और चीजें। तो उन्होंने हजरत असमा ने उनका ये गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया और उनको अपने घर आने से भी मना कर दिया। तो उसके बाद फिर ये आयत उतरी थी सूरह मुमताहिना की जो अभी मैंने आपको बताई है कि आप इनके साथ अदल करो, नेकी करो उनके साथ। ये चीजें हमें फिर, क्योंकि हम अक्सर जब ऐसे मुल्कों में रहते हैं ना तो फिर हमें समझ ही नहीं आती हम इनके साथ क्या करें, ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इसी तरह आप देखें रोम के बादशाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ गिफ्ट्स भेजे थे जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में तकसीम कर दिया था, यानी एक्सेप्ट किया था उनका गिफ्ट। तो हमें इन सब बातों से यह रहनुमाई मिलती है कि ठीक है आप रखें ताल्लुकात मगर विलायत का ताल्लुक नहीं रख सकते। उसकी क्या वजह है? गहरी दोस्तियां नहीं रख सकते। ये क्यों कहा गया? देखें जो भी दोस्त होता है ना उसका इंसान की जिंदगी पे बहुत गहरा असर होता है। तिर्मिज़ी की हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी अपने दोस्त के दीन पे होता है, लिहाजा हर आदमी को अच्छी तरह देखना चाहिए कि वो कैसे अपना दोस्त, कैसे लोगों को अपना दोस्त बना रहा है, किसे अपना दोस्त बना रहा है। तो चाहे अब वो कोई काफिर है, चाहे इवन ये भी लोग जो के दीन से हटे होते हैं, जिनको दीन की कोई परवाह नहीं है, दीन के अहकामात की कोई परवाह नहीं है, उनसे भी दोस्तियां से बाज रहे इंसान तो बेहतर है। वो के देखें खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है ना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान अपने दोस्त के दीन पे होता है। अगर वो है अल्लाह की नाफरमानियां करने वाले, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने वाले, तो फिर आप भी वैसे ही हैं। क्योंकि अगर आपको गैरत नहीं आती कि वो अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहे हैं और आप उनके साथ दोस्तियां बना के बैठे हुए हैं, आपको कोई इसके ऊपर एक वो नहीं, ईमानी गैरत अगर आपको महसूस नहीं होती तो फिर क्या ईमान है, फिर आप भी वैसे ही हुए ना। वो अब ये इंग्लिश की भी तो एक वो है ना, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, इंसान अपनी कंपनी से पहचाना जाता है ना। तो अगर जैसा वो है फिर वैसे आप, तो इसलिए नेक लोगों की दोस्तियां रखनी चाहिए। और कहां ये कि काफिरों को कोई दोस्त बना लेता है, तो अब आप खुद सोचे जिसने काफिर को दोस्त बना लिया तो वो काफिर कुछ ना कुछ तो असरअंदाज होगा ना, जब उसके साथ गहरी दोस्ती होगी एक ही बस मतलब जिसको हम बेस्ट फ्रेंड्स कहते हैं या क्लोज फ्रेंड्स कहते हैं, तो फिर लोग ऐसे फिर उनके साथ बैठते हैं उठते हैं फिर कहते हैं अब क्या करें, अब ये हमें ऐसी अपनी गैदरिंग्स में बुलाते हैं, ऐसी पार्टीज में बुलाते हैं जहां पे ये सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हमारे फ्रेंड्स हैं, सो व्हाट, फ्रेंडशिप है ना। तो इसीलिए तो कहा गया कि नहीं ऐसे लोगों को आप ऐसा गहरा फ्रेंड्स नहीं बना सकते, क्योंकि ईमान सबसे कीमती चीज है। अगर आपको इसकी कदरों कीमत पता हो ना तो आप एट एनी कॉस्ट कोई भी ऐसा काम, ऐसी चीज, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करेंगे जहां पे आपके ईमान में कमी आए या ईमान बचाना मुश्किल हो जाए। कि आपके लिए सबसे प्रेशियस चीज ईमान होगी, लेकिन जिसको अपने ईमान की कोई कोई कुछ उसको ईमान कोई कीमती चीज लगता ही नहीं है, उसको क्या परवाह है। तो ईमान जाता है जाए, ईमान कम होता है तो कम हो कोई बात नहीं, हमारे फ्रेंड्स तो हैं ना, इनसे हम फ्रेंडशिप नहीं छोड़ सकते। तो याद रखें फिर कयामत के दिन सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने ऐसा नक्शा खींचा है सुबहान अल्लाह आयत 27-28 में कि जालिम ना उस दिन अपने हाथों को चबाएगा, काटेगा अपने हाथों को और कहेगा हाय मेरी कमबख्ती, काश मैंने फुलां को अपना दोस्त ना बनाया होता, अरे काश मैंने उसको अपना दोस्त ना बनाया होता। वो इतना रिग्रेट करेगा क्योंकि दोस्त, जाहिर है दोस्त ने उसके ऊपर असर किया, दोस्त के साथ उठने बैठने से उसके अपने दिल में भी दीन की कोई अहमियत नहीं रही, वो अपने दीन के बारे में भी डाउटफुल हो गया, कई जहन में बातें आने लगी, कई क्वेश्चन जो वो दोस्त ने किए भाई, तुम्हारे तो प्रॉफिट का ये पता चलता है, उन्होंने तो इतनी शादियां की, उन्होंने तो इतनी छोटी उम्र की लड़की से शादी कर ली, तुम्हारे दीन में ये क्या बात हुई, तुम लोग पीरियड्स में नहीं पढ़ सकते नमाज, और ये उस वक्त नहीं तुम कर सकते, ये कौन सी स्थिति, ये तो पुरानी बातें हो गई और अब तुम लोग ये बातें करते हो, और तुम्हारे दीन तो फिर लड़ाई और तलवार और मार कुटाई का मजहब है। तो अब इंसान आहिस्ता 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 इस प्रोपोगंडा से इतना मुतासिर हो जाता है कि उसको खुद भी ये दिल में बातें आने लगती, हाँ वाकई मेरा दीन तो ऐसा है, इसी वजह से तो अल्लाह ताला रोकते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल दी इसलिए कि देखिए इस तरह से इंसान के जहन में भी नेगेटिव चीजें आने लगती हैं। तो इवन काफिर तो क्या, ऐसे भी लोग जो दीन से हटे हुए हैं उनके साथ भी आप दोस्तियां ना ज्यादा गांठे, ये बस ये नहीं कि कभी उनसे ताल्लुकात तोड़ने को नहीं कहा जा रहा, विलायत को अगर आप वर्ड को समझ जाए ना तो फिर आपको ये बात सारी समझ आ जाएगी, विलायत नहीं रखनी, ठीक है, ऐसी गहरी दोस्तियां नहीं गांठनी, वरना एक ना एक दिन आप या तो उसको अपने रंग में रंग लेंगे या वो आपको अपने रंग में रंग लेगा। लेकिन अगर देखिए कितने बड़ा रिस्क आप ले रहे हैं ना, अगर उसने आपको अपने रंग में रंग लिया तो आप किधर के रह जाएंगे, ईमान चला गया, आखरत चली गई, आखरत की नाकामी का सबब बन सकता है ये। तो दोस्ती का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जहां से आपका ईमान बढ़े, ईमान आपका ज्यादा हो, जहां पे अल्लाह की मोहब्बत बढ़े आपके दिल के अंदर, वहां पे दोस्ती लगाएं। और बुरे दोस्त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की पनाह चाहिए, देखिए मसनून दुआओं में है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिन यौमिस सू, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगती हूँ यौम सू से, बुरे दिन से, व मिन लैलत सू और बुरी रात से, व मिन साअत सू बुरी घड़ी से, व मिन साहिब सू, ए अल्लाह बुरे दोस्त से, बुरा दोस्त इंसान को डबो देगा, तो बुरे दोस्त से भी अल्लाह की पनाह मांगा करें, व मिन जारे सू फी दारिल मुकामा, और अल्लाह बुरे हमसाए से भी तेरी और बुरी घर से तेरी पनाह मांगती हूँ। तो ये इससे पता चलता है बुरा दोस्त इतना यानी इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला यतखिदुल मोमिनुल काफिरीन औलिया मिन दुनिल मोमिनीन, मोमिनों को छोड़ के तुम जा जाके काफिरों के साथ क्यों दोस्तियां करते हो, मत दोस्ती करो उनके साथ, वमन यफअल ज़ालिका जो ऐसा करेगा फलैसा मिन अल्लाह फी शैइन, देखिए कितनी बड़ी ये बात कह दी गई, जो ऐसा करेगा ना फिर भी कहेगा नहीं जी हम तो दोस्तियां नहीं छोड़ सकते, तो फिर अल्लाह के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई किसी चीज पे नहीं है का मतलब क्या, अल्लाह के साथ फिर इसका कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, अल्लाह के दीन के साथ यानी इसका कोई ताल्लुक नहीं, फिर नहीं अपनी मोहब्बत के दम भरे दीन के साथ और अल्लाह के साथ। इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुकातन, सिवाय इसके कि तुम बचो उनसे बचना, एक एक्सेप्शन हाँ है कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हाँ आपको जो उनके साथ जाहिरदारी रखनी पड़ेगी या फिर उनके साथ ताल्लुक रखना पड़ेगा, वो कब है कि तुम बचो उनसे या तुम डरो उनसे, कि तुम्हें खतरा हो अपनी माल का जान का इज्जत के नुकसान का खतरा हो तुम, कि कुछ ऐसा मसला हो सकता है तो तुम जाहिरदारी उनके साथ रख सकते हो, लेकिन फिर वो खतरा हकीकी होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि जैसे हम सारे तो हर टाइम डरे रहते हैं, आजकल मुसलमानों का हाल क्या, बस इनके दिमागों पे खौफ ही सरत है, हाँ पता नहीं वो हमें क्या कर देंगे, हाय वो हमें नोट कर रहे हैं, वो इतने डरे रहते हैं, अल्लाह अकबर, मतलब तो ऐसु मन तशाओ तो दिलु मन तशाओ, अगर इस पे ईमान है ना मत डरो किसी से, मत डरो, ये डर निकाल दो दिल से, अगर हमने कुरान सीखने के लिए कोई क्लास ले ली तो पता नहीं हमारा नाम कहाँ पता चल जाएगा और किसको और कौन हमारे पीछे लग जाएगा और हम पता नहीं क्या हो जाएंगे, अगर मस्जिद ज्यादा गए तो गाड़ियों के नंबर नोट हो रहे हैं और फिर पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाना है, ओ अल्लाह अकबर, कुछ भी नहीं होता, अल्लाह के हाथ में सारी खैर है, अल्लाह के हाथ में इज्जत और जिल्लत है, अल्लाह के हाथ में बादशाहत है, क्यों डरते हो। तो ये बात है कि ये जो आपके अपने जहन की एक बातें होती है ना, एक खौफ बस खाम खा का हर वक्त हमने अपने ऊपर तारी किया हुआ, ये नहीं, अगर वाकई कोई ऐसा आपको श्योर 100% हो जाए कि कोई ऐसा खतरा है कि जो है जो कोई माल को जान को इज्जत को हो सकता है, तो फिर उनके साथ एक जाहिरी ताल्लुक रख सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी को जान जाने का खतरा हो तो फिर कलमा कुफर भी कह सकता है, फिर और क्या है, तो इंतहाई मजबूरी की हालत हो तो। वयुहद्दिरुकुम अल्लाहु नफ्सा, अल्लाह डराता है तुमको अपनी जात से। देखो याद रखो, अल्लाह को पता है कि ये वाकई खतरा है तुम्हें, या तुम ऐसे ही ऊपर ऊपर से लगा के सिर्फ उनसे ताल्लुकात रखना चाहते हो, कोई मफाद अपना हासिल करना चाहते हो, और अपने दीन पे कॉम्प्रोमाइज चाहे कर लोगे लेकिन उनसे ताल्लुक नहीं छोड़ रहे। अल्लाह को सब पता है, जहां पे तुम अपने दीन पे अमल ना कर सको वो ताल्लुक नहीं रखना, वो ताल्लुक मना है। हम कहते हैं नहीं हमें नहीं कोई असर होता, हम तो बिल्कुल बहुत पक्के हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम काफिरों से भी दोस्ती कर लेते ना कुछ भी नहीं हमें फर्क पड़ता। नहीं, आप विलायत कर ही नहीं सकते। हाँ दावत दें, वो खैर खाई से होगी, उसके लिए विलायत की क्या जरूरत है कि आप बेस्ट फ्रेंड बन के बैठ जाए।